ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तो पुण्यात्माओं, ये स्वाभाविक है। काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिसमें आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कति विश्वास नहीं हो। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी है, नकली संत बेच गए, ये अनेकों दुकान खुला रखी है और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल दुकान है उस परम पिता के सौदा करने की। अब इस पर विश्वास होना बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद उसका हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रधानमंत्री और वो मृत्यु सैया पर अपना टाइम पास कर रहा है, भुगत रहा है किसी भी देश या राष्ट्र का, और पहले वो प्रधानमंत्री था, आज क्या है और आगे क्या होगा। कहते हैं संसा शोक सराय में ये सूतक जन रहती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। यही बिरान माटी होलेगी इनकी, और आगे यम के दूत इनकी देही तोड़ेंगे। वो ज्ञान इनको है नहीं, क्योंकि हम जैसे दास तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर था, और धार्मिकता भी थी लेकिन फिर भी अहंकार अहम खूब हो गया था उस छोटी सी पोस्ट का। और जब कभी चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि हम भी खिचड़ी ज्ञान से रंगे हुए थे, यही मन में आता था कि उसने देखा देखी जाए। जब दास को ज्ञान हुआ तो अपने उच्च अधिकारियों को, एसडीओ को, एक्सिन को, अपने साथी जूनियर इंजीनियर्स को या नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे कहने लगा कि राम बचो, भगवान बचो, तो उनका एक ही जवाब होता था, किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। अपने आत्माओं, हम सब यहीं फंस गए। अब किसने देखा और देखी जाएगी, या लेकर डूब रही हमारे को। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, आंखों देखा बताया, और जैसे कोई अंधा जा रहा है जंगल में वन में और आगे एक भयंकर जानवर रहते हैं उस वन के अंदर, शेर चीते और अन्य बहुत से भेड़िए, ये तो वहां के हैं ही, उनका तो घर है। और उस अंधे को कोई आंखों वाला ये कहता, सूरदास आप गलत रास्ते जा रहे हो, इधर मत जाओ, आगे बड़ा भयंकर बियाबान है और भयंकर जानवर तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, तेरा बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा यूं कहे कि किसने देखा, देखी जाएगी, अंधे तुझे दिखता नहीं, आंखें वाले की तुम मानता नहीं, तो जाकर देख ले फिर क्या होगा, वही होगा जो वो बता रहा है। तो ये जितने संत महापुरुष दास जिनके नाम शुभ नाम बार बार आपको याद दिलाता है, उन्होंने भगवान को देखा और हमें बताया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला जुद्र हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा और वो स्थान देखा जहां जीव की दुर्गति होती है, जहां उल्टे लटकाए जाते हैं, नरक के अंदर बड़े बड़े कुंड भरे हैं जिनको इन हाहाकार मची है। उन्होंने आकर बताया है, गरीबदास जी कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। गरीबदास जी कहते हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देखकर आए हमने आकर तुम्हें बता दिया सत्य है, और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यही दुख है, यही सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा फिर देखेंगे या फिर देखी जाएगी। अब फिर क्या देखेगा, जब गदा पड़ने के बाद फिर तो कुमार देखेगा, आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे, फिर क्या देखा जब गदा बन जाएगा। ये परमात्मा ने बताया, परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहां मन भोरे कहीं कुरड़े चरने जाई, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो, मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हरणा कुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में, फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चरने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मास गलाई। पुण्यात्माओं आज मनुष्य जीवन में, क्योंकि विद्यार्थी को मात पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लोखी सुखी रोटी खाते हैं, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं और कार्य से फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कसी हाथ में सिर पर टोकरी, तब समझ में आवे कहे नाश मंत्र नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। अब हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमारे यहां जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे, अंडरस्टूड है, कुछ भी बन सकते हैं। और जिन्होंने देखा भगवान ने बताया, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के वही घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली मोकत फिरे फिर टोक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बे सर नक पे बैणी वो पैर थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी देख साहेब के खेले। ये भगवान ने बताई और परमात्मा के बताए और परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों ने बताया और प्रत्यक्ष आपके सामने है। क्या बताते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकारों की औरतें, नवाबों की परिवार, राजाओं के परिवार पर्दों में रहा करते थे, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, कई कई चौकी लगती थी कोई गैर पुरुष अंदर प्रवेश ना कर जा, और काजू किशमिश के हलवे और खीर बना के खाया करती थी, क्योंकि वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। राजा के घर जन्म हुआ, अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे वर से ब्याही गई और पिछली बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर था नहीं। जब तक इन्वर्टर की बैटरी पीछे से चार्ज है, आगे चार्जर बेसिक ना लाओ, वो पूरा काम कर रही होती है जब तक उसकी अक्षमता चल है, और जिस समय उसकी अक्षमता समाप्त होगी एकदम सब ही सुविधाएं जो उसे प्राप्त थी बंद हो जाएंगे। ना पंखा चलेगा, ना बल्ब जगेगा, ना को कूलर चलेगा, यानी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज उच्च पद प्राप्त हैं और अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, और भक्ति ना करने से क्या बताया कि वो बीबी यानी राजाओं की रानियां, नवाबों की रानियां काजू किशमिश के हलवे खाया करती, जूठे छोड़ा करती, उनकी नौकरानियां और उनके बच्चे खाया करते थे। ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसा है और आगे मजदूरी या कोई धंधा आपका है नहीं, तो उसने खो खराब करो, खर्चोते फेंको, मौज आपकी। जब वह जेब खाली हो जाएगी, बैंक बैलेंस नल हो जाएगा, फिर पता चलेगा आपको उस पैसे की कीमत का। और आगे ना किया, बैंक बैलेंस खत्म हुआ। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, वो बीबी पड़दा रहे थी, एड्डी से लेकर चोटी तक पर्दों में रहा करती, कोई उनका अंग ना देख ले, इज्जत का नाश हो जाए, और भक्ति करी नहीं, संत के निकट गए नहीं, सत्संग सुना नहीं। ओए होए, कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वे भव जल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। जो साधना कर रहे हैं और नकली कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ है। वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दरिया से पार होने के लिए भादों के अंदर बहुत वर्षा होती है और सभी दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती हैं, ऊपर किनारों को छूती हुई चल रही होती है, इतना भयंकर जल चलता है, और उस समय कोई किसी से पूछे कि मैंने दरिया से पार जाना है कैसे जाऊं, और उसको कोई मूर्ख ये कहे ये भेड़ खड़ी है, इसका पूछ पकड़ ले, दरिया में बढ़ जाओ दोनों और ये पार कर देगी, तो कहते नहीं। तो जो हमारे धर्म गुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। कि जैसे शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो इस दास के पास कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप है, जो परमात्मा की सत भक्ति का पूर्ण मार्ग है, साधन है, वो इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये अंडरस्टूड हो गया कि अन्य सभी भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, यानी भव सागर से, संसार सागर से वो पार होने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं, वो इसमें डूब कर मरेंगे, यहीं रह जाएंगे। जिनको नहीं मिला साध सत्संग, यानी संत का जिसको सत्संग नहीं मिला, तो वो यहीं रह जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं कि अब वो पर्दे के अंदर बंद सारी सुविधाएं, क्योंकि उसके भाग्य में सब कुछ भगवान देगा ही देगा, जो उसके प्रारब्ध में लिखा है, और संत की छींट लगी नहीं, सत्संग सुन पाई नहीं, क्योंकि इज्जत वाली वो बेटी थी वे, और कहते हैं हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकला, हमारी इज्जत का नाश हो जाए। और फिर क्या बताते हैं भविष्य क्या होगा उन भोली आत्माओं का, कहते हैं बिब्बी पड़ रहे थी, डोडी लगे थी बार, एड्डी से लेकर चोटी तक अंगों को ढक कर रखती थी, भक्ति ना करने से, भक्ति परमात्मा की सत्साधना ना करने से, आज कुतिया बनकर सरेआम घूम रही है वह इज्जत, कोई वस्त्र भी नहीं उसके किसी अंग पर, उन आत्माओं या आत्मा का ठेस लगनी चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जो भगवान ने बोल रखे सारी सच्ची है। हमारे इस काल के भांग का नशा घना हो गया, क्योंकि समय पर टूक मिल रही, जब चाहो खाना खा लें, जब चाहो भगवान घड़ लें, डांस देख लें, फिल्म देख लें, ये अनमोल समय न्यो बर्बाद करने का था, हमें पता नहीं था, अरे पता लग गया, अब कहते समझा है तो सिर दर्पाओ और भौर नहीं रहे ऐसा दाव। कहते वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, इब गात उघाड़े, यानी नंगी फिर रही है, और करें सरायों शोर, पहले तो काजू क्रिसमस के हलवे जूठे छोड़ा करती थी, और आज एक टूक के लिए वो कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। अतिथि आते थे, अपनी रोटियां लाते थे, खाना खा रहे होते हैं, कुतिया देख रही होती है वो कुत्ता कि कब तेरी तरफ टूक डाले, और छोटा सा टूक ग्रास भगवान आदमी उस कुत्ते की तरफ ऐसे फेंक देता है। अब साथ में वह एक दो ग्राम, यानी दो चार टूकों में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, एक टूक के लिए तरस रही है, और जब खो दिया अनमोल जीवन साधना ना करने से। नक बेसर नक पर बनी और पहरे थी हार हमेल, एक एक लाख के गहने और हार पहना करती थी, और कहते हो सुंदरी से आज कुतिया बन गई, सुन साहेब के खेल। तो पुणात्मा इन बातों से डर बनना चाहिए, और भयबन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ लें, अगर कहीं खेल रहे हो और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में व्यस रखा हो, छोटे बच्चे उसको उलगाकर पी जाते हैं, और जिस समय वो बड़े हो जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, डस जैसे मृत्यु हो जाती है, बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया, तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके, और डर बिना तो जान बच गई, और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिलावट करके धनी बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं व्यस। और जिस समय आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो उस समय आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे व्यस रखा हो बोतल में। बच्चों के भी हाथ से दूर रख दोगे कि कहीं किसी का टच ना हो जाए। अगर किसी विष माने कोई औषधि होती है, जैसे फसल में डालते कीड़े मारने की दवाइयां होती हैं, तो उनको ऊपर रख दोगे एक तरफ, किसी का हाथ ना लगे। और सर्प जब दिख जाए उस बालक ने, जब बड़ा हो जाता है तो दूर भागता है, और उसे भी कहता है डरना चाहो ना सर्प है, डस जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान होगा, आप व्यस नहीं खा सकते, सर्प को नहीं छू सकते और नंगे तार को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति ना करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, किसी की आत्मा दुखाना, यानी ये वो स्पार्किंग कर रहा तार पकड़ के तुल्य है, या विष खाने के तुल्य है। और जब आपको ज्ञान होगा तो क्या स्थिति होगी, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी आपके जीवन में यदि आप खुशी ग्रहण करना चाहते हो भगवान से, राम रंग की होरी खेलना चाहते हो, तो जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जहर का एक कण पड़ा हो उसको खा सकता है, आपको पता है विष है, उस कण ने भी नहीं खा सकते, उसको भी उठा कर कित मिट्टी में दाबोगे या कित ऐसी जगह डालोगे किसी का हाथ और के भी ना लग जाए। तो जब आपकी को ज्ञान होगा, सच्चाई से परिचित हो जाओगे, तो जो गलतियां आज आप खुश हो होकर और गर्व के साथ कर रहे हो, आपका हाथ स्थिर हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। ऐसे भक्त अब आ रहे हैं। एक भक्त कह रहा था जी मुझे 250 रुपये पड़े मिले और क्या करूं, कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने दान पात्र में डाल दिए। देखो एक और कह रहा था जी मैंने ऐसे ही 1100 रुपये मिले और दान पात्र में डाल दिए। और पहले क्या होता, देख काख में नाजो को देखना लेठाते ने और कह कि गुट्टी लावो उसका, कह कि और बकवाद में बर्बाद करो, आप भी क्रम फोड़ो और दूसरे की। अब उसके दान में लग गए तो उसका भाग जाएंगे जिसके वो पड़े थे, वो तो दान कर नहीं सके था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, आप पे भार नहीं पड़े, उस भगवान आत्मा का पुण्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, एक उसकी माँ बता रही थी कि मेरा लड़का स्कूल से आता तीसरी कक्षा का, उसने 50 रुपये मिल गए और उसने पूछा कईयों से भी किसी के पैसे गिरे हों, बच्चों के तो थे ही नहीं किसी और के, वो घर ले आया तो उसकी माँ बोली बेटा क्या करेगा, दान पात्र में डालूंगा मैं, ना छेड़ू ना खाऊं कोई ना, इसकी चीज ना खाऊं। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार जब हमारी धारणा बचपन से ही बनेगी, और अब हम क्या ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, हम ट्रेनिंग ये सुना करते पहले जो दास छोटा सा था कि उसका लड़का उसने ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली, एक कोठी बना ली, बड़ी कमाई कर रहा है, तो हमारा वो इंजेक्शन लग गया करते कि हम भी अफसर बन गए तो कोठी बनावांगे, खूब ऐसे ऐसे करेंगे, और फिर अब ये लगेंगे एंटीबायोटिक इस तत्व ज्ञान के, तो फिर हमारी आत्मा सिहर जाएगी, बुरा काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात रही कि हम जो गलतियां करते थे या किसी चीज की हम लूट मचाना चाहते थे, दो कारण थे, एक तो हमारी परंपराएं इतनी विशाल बन गई और वो हमारी मजबूरी बन गई, जैसे विवाह करते हैं बच्चों का विशेषकर लड़की का, तो हमने इस परंपरा को इतना बिगाड़ दिया, बेटी दुश्मन बना ली और गर्भ में मारन लग गए, किस लिए कि विवाह करना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपये लगेंगे और जिसके 2-3 कन्या होगी उसका तो मौत हो जाती थी। अब ये किस लिए हमने, क्यों भी, क्योंकि ये पैसे वाले जो मायाधारी मस्करे होते हैं ये सब परंपराएं खराब करते हैं, और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं वो उनकी देखम देखा उसको करना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है इसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है, और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते ये हमारी अपनी तरफ का एक एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है, जिसमें ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उस समय ना कोई बराती था ना बाती था, ना कोई जलेबी लाडू तारणिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, बेटा यह सावित्री इसका नाम है, यह युवा लड़की तेरी पत्नी और तू इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा है तेरी पत्नी, तू इसका पति और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए और सारा संसार उन्हीं से बनाए। और हम क्या ड्रामा करते, तो ये भूल कर नहीं करना, क्योंकि समाज बिगड़ा भी ऐसे ही है और सुंदर भी ऐसे का। जब हम चंद व्यक्ति आज दृढ़ होंगे, सभी दुखियां जिस परंपरा से, लेकिन मजबूरी बनगी, गांव में एक रिवाज बनगी, ये करना ही पड़ेगा। ना कोई बात हमने करना है, ना लेना है, ना देना है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। हमने संस्कार खत्म करने, और संस्कार खत्म किए बिना हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं तो फिर संस्कार बस फिर यही उलझे पड़े रह जाएंगे। तो इससे एक तो हम हल्के होंगे, फिर हमने माया की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो रोटी का धंधा करेंगे, भक्ति करेंगे, शांत रहेंगे। ये तो एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म गाड़ी का इंतजार करेंगे, टिकट हमने ले रखी है और अपना जब गाड़ी आएगी चले भाई चलो अपना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यहां से जाने का रहेगा। तो पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। घड़ी बड़े मकानों की कति आवश्यकता नहीं, ठीक है आज कलयुग है, कोई व्हीकल की आवश्यकता है, भगवान आपको और उसे भी अच्छा देगा जब दृढ़ विश्वास से लगे रहोगे। और मकान आप सीमित बनाना, ज्यादा बकवादों में प्लाट खरीदन में मत लगे रहना, या भूल है आपके। ऐसे बहुत से प्रमाण है। एक भक्त बता रहा था कल परसों के, एक डॉक्टर था और उसके पास उसकी पत्नी भी डॉक्टर नहीं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे। देख बिजली गिरनी हो जब ऐसे गिरती, अब माया की कमी नहीं, भगवान क्या ले रहा है, ऐसे करते थे। उन बच्चों ने ऐसा गलती कर दी, दोनों ने भाई बहन ने ब्याह कर लिया विदेश में, क्यों वहां तो आग लगी पड़ी है, कोई शर्म लाज का काम में नहीं रह रहा। वो दोनों विष पी कर मर गए, अब चाट ले उस धन ने, वह कोठी भी रहेगी और वो चौधरपना भी गया। जिनके लिए दुनिया को लूट रहे थे, एक इंजेक्शन लाकर 100-100 रुपये 500 रुपये रख दे, ये विष खाया। अब कहते संसार शोक सराय में सूतक दिन राती और जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जीवत इनका ये हाल हो गया, राग यम के दूत उनके साथ क्या करेंगे, कहते उनकी छाती तोड़ेंगे, उनका लठ मारेंगे। प्रत्येक प्राणी कोई भी वहां जो भक्ति नहीं करकर ये बकवादों में जीवन व्यर्थ कर गया, तो ऐसी स्थिति होगी इनकी। तो कहने का भाव ये है दास का कि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं इस भक्ति मार्ग के, हम भक्त हैं, भक्त कहो विद्यार्थी कहो। और भक्त और विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक कर जो अन्य कार्य करता है, वो विद्यार्थी भटक चुका अपने मार्ग से। तो जो आज भक्ति नहीं कर रहे मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति है, चाहे कोई आईएएस आईपीएस या कोई जज वकील इंजीनियर डॉक्टर है, या हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उस भटके हुए विद्यार्थी की तरह है जो आगे चलकर कितना पछतावेगा। अब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसी राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहां पर क्या होता है कि ज्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं और 98% धूल फांकते फिरते हैं, वो सूखी जय बोलते फिरते। और उनको न्यू कह दे चलो सत्संग में रहो, कोना क्या करेंगे सत्संग में क्या ले रहे हैं, और उनको न्यू कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा उठा लेंगे, ये कोई बात हुई। और फिर जैसे एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला चलोगे, वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाओगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर सुबह आपको आपके काम से पहले छोड़ दूंगा, यहां पर रात का सत्संग सुनाओगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। बोला ना टाइम नहीं, टाइम नहीं, फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहां खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया, इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा रहे वहां उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर से। उसने कहा कि उस गांव में वहां से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, अरे रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना तो वो जो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा था टाइम नहीं। उन्होंने पूछता उसे कौन से गांव में, कहां से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहां पहुंच गया रागनी कंपटीशन सुन खातिर, और यहां आया, ये फूट रहे बाघ हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो नु कह देना भाई शुक्रवार का व्रत और बढ़ा लाभ दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई कुछ साल आसर जाता है चुरू जिले में और उसको कोई ये कह देना बालाजी जावे ना बस कमाल हो जा, और वैष्णो देवी चला जा तो बेड़ा पार हो जा, तो दोनों जगह जागा वो उसके कहने से। और यहां कोई नो कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारे झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है, वहां चलो भक्ति करो, और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना वो नहीं करना ना, ये कोई वाह भाई वाह ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पुरानी परंपराएं हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है जब परमात्मा से वो परिचित हो चुके तब उन्होंने क्या बताया, परमेश्वर ने से परिचित ज्ञान से उन्होंने क्या बताया कि मैं तो दे दी है बाल्य में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्य में बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे। आत्मा रोती है कि हे परमात्मा मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, इस काल ने यू मन अपना एजेंट इस आत्मा के साथ इसका संयोग कर दिया। और मन का जैसे गधे और गाय का स्वभाव में अंतर होता है, तो गधे और गाय का गढ़ जोड़ दिया, एक रस्से से बांध दिए कट्ठे। अब गधे का स्वभाव करोड़ियों पर जाने का और गाय मरे भूखी, वहां पर उसने तो चारा चाहिए शुद्ध। तो इस आत्मा को मन के साथ इस काल ने जोड़ दिया, और अब ये आत्मा रोती है जब इसको कभी आभास होता है। तो गरीबदास जी ने उसको कैसे चित्रित किया है, आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। बैरा वजीर जिसने सुनता ना हो, कहने का भाव यह है कि इसको यदि बुराई छोड़ने की और सतभक्ति करने की कहे तो यू बैरा हो जाता है, कते नहीं सुनता। अरे एक संसारिक व्यक्ति कोई जरा सी कह दे आजा गुटी लावांगे चल वहां बैठेंगे, चल भाई चल जब बैठ साथ साथ हो ले ले बीड़ी पी ले रब पी ले तो क्यों हो रहा लाए गुटी, जब बै ट्रेनिंग ले लेगा ला दे देता है, ऐसी बुराई तुरंत ग्रहण कर लेता है। और सत भक्ति और सत मार्ग बुराई छोड़ने की कहते उनको नो के छुट्टे से कहते मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चीने ना बुझे शब्द जो गैरे नू, संसारी दी गल्ला चीने नहीं बूझे शब्द जोगेरेनु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बाल में बेरे नूम तो दे दिए बाल में बेरे नूम तो दे दी। श्वेत छतर सिर मुकट बिराजे देखत ना उस चेरे नू। श्वेत छतर सिर मुकट बिराजे देखत ना उस चेरे नू। ये ऊंची थड़िया खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु। ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। मैं तो दे दिए बालम बैरे नु। ये संसार समझदा नहीं ये कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। मैं तो दे दी ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी
अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान से प्राप्त इस ज्ञान को आंखों देख कर भगवान को और इस संसार की स्थिति को और ऊपर के सुख को। कहते हैं कि मैं तो दे दी वालंबैरे नू। आत्मा को हमें समझाने के लिए संतों ने सौ सौ प्रकार के तरीके अपनाए हैं। क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला जी ने आम आदमी कह दे उसका तुरंत साधना शुरू कर देगा। ना बुद्ध शब्द जो गहरे नो जो गूढ़ ज्ञान है हम बता रहे हैं इसने सुनते नहीं। जैसे परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे। ईरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कह रहे कि चारों युग मां का हमने सत्य ज्ञान के और तत्व ज्ञान के और यथार्थ भक्ति मार्ग के हीरे मोतीनों सत तुम्हारे सामने फेंके। गली गली में खड़े हो गए चौराहे पर खड़े होकर हमने ये ज्ञान सुनाया जगह जगह सत्संग करके। लेकिन हीरे मोती इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती तुमने स्वीकार नहीं किए क्योंकि तुम पारखू नहीं थे। और ये आन उपासना रूपी आन देवताओं की पूजा तीर्थ व्रत ये दो सरहद आदि निकाल रहे हो ये तो तुम डले ढो रहे हो डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर पत्थर इनको बहुमूल्य जानकर उन अज्ञानी संतों और उन ऋषियों के बहकाए हुए तुम इनको बहुमूल्य मान रहे हो इन साधनाओं को। और हम जो सत साधना और मोक्ष रूपी ये हीरे मोती लाल यानी बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हारे सामने पटक रहे हैं डाल रहे हैं बखेर रहे हैं बरसा रहे हैं वर्षा कर रहे हैं तत्व ज्ञान की और तुम फिर भी डड़े इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना करके। तो वो यही समझाना चाहते हैं गरीबदास जी, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नो। मुर्दों से ती कैसे, गांव में कोई बाबा रहा करता था संत कभी, और वो छोटी मोटी सिद्धि युक्त होते थे, छोटे मोटे छंतर मंतर तकरीबन पूर्व संस्कार के से उनमें आ ही जाते हैं। अब उसकी मृत्यु के बाद उस संत की यादगार बना ली तो सारा गांव पूजने लग गया उसको, हम तो बाबा की पूजा करते हैं। अब भले आदमी बाबा है, अब वो वहां पर जैसे कोई रोगी है, और वैद्य के पास गया और वैद्य ने उसको देखकर नब्ज रोग जानकर दवाई दे दी, स्वस्थ हुआ ठीक है। सभी ने वो अच्छा वैद्य था, मृत्यु होगी फिर उसकी यादगार बना दी, एक बड़ा मंदिर बना दिया उसके ऊपर। अब वहां कोई जाता किस लिए जा रहा है कि वैद्य जी से, वैद्य जी के पास जा रहा हूं दवाई लेने, नहीं। अब वैद्य जी वहां नहीं है, वैद्य जी की यादगार है वो। जैसा वैद्य वहां रहता था नब्ज पकड़कर रोग जानकर औषधि देता था, ऐसा जीवित वैद्य खोजो उससे रोग कटेगा। और वो जीवित वैद्य सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है, इस विश्व में रहा नहीं कोई। तो हम ये क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, इन मुर्दा से ती प्रीत लगावे, जो मर गया उसने पूछते फिरे और उससे आशा कर रहे हमें लाभ दिए, वापस प्रेत बड़ी का बैठा उस मंडी में, अगर वहां है तो हर मोक्ष होता तो वहां किया करा था, टिंडे ले था उसमें उस मना रखी यादगार। तो क्या कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु, और जिंदे सतगुरु को ना जानकर ये अपना जीवन व्यर्थ उन बच्चों जैसी कर रहे हैं जो मरे हुए वैद्य की यादगार पर जाकर और दवाई मांगने औषधि मांगने जा रहे हैं, उपचार की इच्छा लेकर जा रहे हैं। वो इतने भोले हैं जैसे वो धार्मिक मार्ग में जो ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां संत नहीं उनकी यादगारें हैं, और जहां संत हैं वो नकली हैं, वो भी इतने भोले हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, जो आज सतलोक आसन बरवाड़ा जिला हिसार से जुड़ चुके हैं और आगे जो जुड़ेंगे। अब क्या बता रहे हैं, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, आंखों देख कर आए गरीबदास जी बता रहे, भगवान मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान मुकुट है। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है और सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके यहाँ ताची आत्माओं को मिलता है। कवि एक उत्तराचरण करते हैं, वेद गवाही दे रहे हैं, और जिस कारण उसको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और गरीबदास साहिब जी ने आकर बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे। गरीबदास जी भगवान को देखकर आए और बताया है कि सिर पर मुकुट ऊपर श्वेत छत्र है उस परम पिता के, और उसको ना देख करके तुम कोई निराकार निराकार का घाटा जोड़ रहे हो और कोई मुर्दों को पूजते हुए फिर रहे हो, और ऊंची थलियां खेती वो हैं, जैसे वर्तमान में ये फुहारे पूरे दीप चले हैं, पहले उस समय जब ये परमात्मा का ज्ञान गरीबदास जी को प्राप्त हुआ उस समय समझाते हुए कहा है कि जैसे एक डहर स्थान अक्षेत्र होता जमीन का डहर, और एक होती है थली ऊंचे टीले, वर्षा पर आधारित था सारा कृषि जो है सिस्टम। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो डहर स्थान होता है वो झील का स्थान होता है, समतल होता है और घना उपजाऊ होता है, और ऊंची थलियों पर वर्षा हो जाती है, वो भी पानी बह करके उस नीचे वाले नहर यानी समतल स्थान पर आता है, और जो ऊपर उन टीबों पर थलियों पर ऊंचे स्थानों पर डूंगर पर जो खेती करते हैं, वर्षा होगी कभी तो वो मुश्किल से एक एकड़ में दो मण दाने होते हों तो होना भी हो, और डहर के अंदर यदि आप डहर अक्षेत्र में बीजोगे तो एक एकड़ में 60-70 मण गेहूं हो कणक होते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो इन आन उपासना करके, तीर्थ व्रतों पर जाते हो, श्राद्ध करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, और ये तो है समझ ले थलियों पर बीज बो रखा तुमने, वहां भूखे मरोगे, वहां से कोई उपलब्धि नहीं होगी, और आपका अपना जो वास्तविक फील्ड है डहर, जो आपका असली भगवान है, जो एक एकड़ में 60 मण 70 मण कणक आपको देगा, धनी बना देगा, उसको भूल गए, यानी उस परम पिता कबीर भगवान को भूलकर इन आन उपासना करके आप उस थलियों पर बीज बोने वाले किसान की तरह एक कंगाल हो गए जो अपने ही डहर को भूले बैठा है। तो गरीबदास जी ने आके वो डहर याद दिलाई, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। तो यहां क्या बता रहे हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नू, ऊंची थड़िया खेती बोवे भूल गए निज डेरे। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ओए होए कि ये संसार भोली आत्मा यथार्थ उस सच्चे सुख सथल सतलोक को भूल के इस काल के लोक में, और इसको यहां पर जैसे इतना दुख है आपको, कबीर साहब क्या कहते, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे, या सुख नाम की चीज नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कहते हैं ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अब क्या बताना चाहते हैं, यहां पर जैसे एक व्यक्ति के तीन पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, सारा परिवार टक्कर मार रहा रो रहा था, उसका शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से गांव के व्यक्ति आ रहे थे, तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका एक का बेटा था और उसकी ही मृत्यु हो चुकी थी 2-3-4 वर्ष पहले। तो वहां सांत्वना देने वाले उस परिवार को कह रहे थे, भाई यहां तो देखो सबके साथ ये घटना घटती है, और उसको जिसका ताजा ताजा 3 बेटे एक की मृत्यु हुई थी उसको समझा रहे थे, देख इसको देखकर जीले भाई, इसका एक का बेटा था वो भी मर गया बेचारे का। तो फिर उसको शांति सी हुई, उसने के सोचा कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो जीवित हैं, इसका एक था वो भी नारा बेचारे का। तो फिर उन्होंने रोटी खाई, खाना खाया, दुखी सुखी हो करके। तो उससे कहते हैं, यहां परमात्मा कहना चाहते हैं, इस झूठे सुख न सुख है, यानी हल्के दुख को आपने सुख मान लिया। एक भक्त बता रहा था कि मेरी बेटी उत्पन्न हुई, उसका गुदा मार्ग नहीं था, अरे इतना दुखी हो गया मेरा कलेजा फटन हो गया, क्या होगा कन्या का है, तो मैं हॉस्पिटल लेकर गया, जिस वार्ड में मैं गया ऐसे 4 केस और थे, तो मैंने शांति सी मिली को हो चलो और भी है इसे, तो क्या बेटी का गुदा लगी फिर वो, इसमें शांति मालिक और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, वो सुख मान लिया। तो यहां ऐसा सुख है भाई, ये सत्कर मान लियो, और यही बताना चाह रहे हैं गरीबदास जी, ये संसार समझदा नहीं ये कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये जून का महीना, राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र, और दोपहर के समय बाहर 12 बजे कति कालर में धूप में, और गुटी लाए कोई पड़ा है, रेत में पड़ा है, पसीने आ रहे हैं, मुंह में झागाए पड़े हैं। उसको कोई कहता है, अरे भैया उठ यहां से, तू बहुत दुखी हो रहा, चल तुझे वहां छाया में बैठाता हूं। छोड़ दे मौजूरी है, छोड़ दे मौजूरी है। तो उसने पता है नहीं तेरे के वो क्योंकि घुटी ला रहा है, वह वह मौज दिखाई दे रही है, तुम्हें बुरा हाल उसका। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने भांग डाल रखी है, सब ने एक जैसी नशा हो गया, एक जैसी भाषा सबकी। जैसे आप कभी शराब के ठेके में को गुटी ला के 5-7 चल रहे हो ना, वहां टीटी पाक के उनसे किसी से बात करके देख लियो, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी, करते होंगे भाई ठीक हो रहा मौज हो रही है। तो परमात्मा कहते 21 ब्रह्मांड में किसी ने टोक कर देख ले, जो किसी ने देखा देखी जागी, जो कर रहे हैं वो ठाठ हो रहे हैं बस। अब जैसे कोई हॉस्पिटल में दुखी बीमार था किसी का बच्चा, और उसकी खैर खबर लेने के लिए कोई रिश्तेदार कोई मित्र जा रहे थे, और वो पूछ रहे थे और क्या हाल है, अब ठीक ठाक है वैसे तो, बाल का क्या हाल, बालक तो बस बच्चे भरोसा है, तो खाक ठीक ठाक है, यहाँ पर लड़के का मृत्यु होने वाली है, बच्चे की लड़का है या लड़की, और कले जाने कर रहा है और क्या, और बाकी ठीक है, बाकी खाक ठीक है। अब जैसे कोई कोर्ट में कचहरियों में मिलता मित्र या रिश्तेदार, हेलो और ठीक हो, हाँ जी ठीक है ठीक ठाक, कचहरियों में ठीक ठाक का के काम, दोनों दुखी जा रहे, दोनों दुखी, एक एक मिनट में नोरे है, पता नहीं क्या होगा, आज तो आज गवाही की तारीख है, आज फलाना होना है। तो परमात्मा कहते तुम इस काल के इस दो पैरी को, और कह रहे हो श्याम है, श्याम श्याम का समय ठंडा होता है, दो पैर गर्म होती है, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दो पैरे नू, गरीब दासिये वक्त जाते है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दासिये वक्त जाते है रोवोगे इस पैरे। होय होय पुनात्मो, गरीब दास जी एक बहुत बड़े किसान जाट थे, 1400 एकड़ जमीन थी इनके, छुड़ानी गांव आज भी गवाह इस गांव इस बात का। और वो महापुरुष इतने बड़े ग्रंथ को बोल रहा है, जिसके हम पढ़ते पढ़ते लगातार 6-6 पाठी लग जाते हैं, जब 48 घंटे में पूरा होता है ये ज्ञान, तो उस महापुरुष का क्या स्वार था, कोई डूम भाट वो नहीं था, कोई मांगने खाने वाला वो नहीं था, कोई कबीसर नहीं था, या कोई परंपरागत कोई ब्राह्मण या किसी ऐसी परंपरा से संबंधित नहीं था, कोई उसकी कोई रोजी रोटी का सवाल था। तो इस बात से आपने विश्वास करना पड़ेगा कि जो ये महापुरुष बोल के गए कति 100% सत्य है, और इसको स्वीकार करने से ही आपका हित है। तो ये क्या बताते हैं कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन एक बार आपके हाथ से छूट गया, ये वक्त ये समय ये पैरा, गरीब दास ये वक्त जात है रोग इस पैरे ने, पैरे माने इस समय ने, मनुष्य जीवन का जो पीरियड आपका है, ये पैरा आपका, पैर यानी समय वक्त, इसको फिर याद करवाया करोगे जब पशु पक्षी बन जाओगे, जितने भी कुत्ते आप देखते हो कभी कभी रात्रि के समय भौंकते नहीं रोते हैं, और ऊपर को मुंह करते फिर वैसे, ओ अब क्या बना भाई, अब तो बात बिगड़ गई। इस मनुष्य जीवन के रहते, और सौभाग्य हुआ आपका मनुष्य जीवन हो और वो तत्वदर्शी संत प्राप्त हो मिल जा, तो उस समय परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पीछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते हम कुछ कर सकते हैं, बाद में तो रोना पीटना रह जाता है, फिर उसका कोई यूज नहीं। तो पुण्यात्मा एक तो आपका सौभाग्य आपको ऐसे समय में जन्म है, परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान मूल ज्ञान और कंप्लीट कोर्स को अब सार्वजनिक करना था, पूर्व निर्धारित था, और ऐसे समय में जिनको मानव शरीर प्राप्त है और जिनको यह स्थान प्राप्त हो गया, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ ये सत्कर मान लेना, आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते। चाहे कोई दुख में यहां आया है चाहे कोई सुख में आया है, वो बहुत अच्छी किस्मत के इंसान है यदि इस मार्ग पर डटे रहे तो। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी आते हैं वो तो किसी के कहने सुनने से जो आता है, जो इस ये सोचकर आता है कि चल देख लेते हैं वहां भी, उसको यहां राहत नहीं मिलेगी। या तो वो व्यक्ति आवे सब जगह ते थक ले और जब उसकी कति आशा टूट ली हो क्योंकि कितने ठिकाना नहीं, उसकी सुनाई यहां तुरंत होगी क्योंकि उसका भाव ये रहेगा कि मैंने सारे देख लिया कहीं ठिकाना नहीं है। और फिर यहां हृदय से रोके पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया, चाहे कैसी बीमारी हो कैसी ही टेंशन हो। परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा की खोज क्यों करते थे, राजा लोग भी ढूंढा करते भगवान मिल जाए और सुख हो मुझे, वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ई मिला आपने इस सतलोक आश्रम पर वाला जिला हिसार हरियाणा में। और गरीबदास जी क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने। गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दिए बल याने। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी है बाल याने नू, मैं तो दे दिए बाल याने। शील संतोष विवेक विचारो भाई दूर करो जुलमाने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुलमाने नू, ज्ञान दराच ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू।